नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाएं अवसर और सहयोग मिलने पर हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल चुनाव में बढ़त हासिल की। स्थापित पार्टियों को पछाड़ते हुए सरकार गठन की दिशा में कदम उठाया। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का सामना लिन चुन यी से होगा। और अहमदाबाद में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत और विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाओं से बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और लोगों का जीवन सुगम बनेगा।
जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, यह पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण में एक नया अध्याय लिख रहा है और महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की महिला शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है, अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
श्री मोदी ने 18,300 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। इनमें मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर और दीपाली चौक मजलिस पार्क मजेंटा लाइन कॉरिडोर शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के तहत 16 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 3 नए कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि मेट्रो रेल दिल्ली की जीवन रेखा बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आवास तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित सामान्य पूल आवासीय सुविधा GPRA टाइप 5 का दौरा किया और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपी। इस अवसर पर श्री मोदी ने श्रमजीवियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने GPRA पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस वर्ष का विषय है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और प्रयास। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये महिला अधिकारों को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्त्री पुरुष समानता में तेजी लाने की भावना को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं से परे महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने पर बल देना है। भारत में केंद्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। देश में लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई इकाई पहल की गई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गिव टू गेन नामक वैश्विक अभियान के साथ मनाया जा रहा है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाएं अवसर और सहयोग मिलने पर हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि उद्यमिता हो या कॉरपोरेट जगत, महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
हमारे देश तेजी से प्रगति करे और नागरिकों के पूर्ण क्षमता का राष्ट्र हित में उपयोग हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी बेटियों को उच्च सपने देखने के लिए प्रेरित करें, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हम उनके कदम से कदम मिला के सहयोग करें।
राष्ट्रपति मुर्मू ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मुद्रा योजना और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।
स्किल इंडिया मिशन महिलाओं को गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी कुशल बना रही है। महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में भी आगे बढ़ रही है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले आधे से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर है। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026-27 में सी मार्ट पहल की शुरुआत की गई।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में महिलाओं के नेतृत्व में शक्ति वॉक का आयोजन किया। इस अवसर पर सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में महिला नेतृत्व वाले विकास की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
हम सब एक साथ चलकर यही संदेश देना चाहते हैं कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है और इसी तरह कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। देश को जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत 2047 का है, तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को, संकल्प को सिद्धि पहुंचाने में हम सभी आगे बढ़कर काम करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला दिवस राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए भविष्य निर्माण के महत्व को दर्शाता है।
आज भारत की नारी समाज को भी नेतृत्व देती है और आज का दिन सच में हम सब के लिए आगे की सोचने का है, लक्ष्य के निर्धारित करने का है, देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का है।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने अस्मिता लीग का शुभारंभ किया। उधर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंडीगढ़ में सुखना लेक पुलिस चौकी से वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में विंटेज कार और बाइक रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस विशेष रैली का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने नेपाल के संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर अगली सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। बालेन के नाम से लोकप्रिय आरएसपी के प्रधानमंत्री पद के 35 वर्षीय उम्मीदवार ने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार के प्रधानमंत्री और सीपीएनयूएमएल के उम्मीदवार केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 106 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत 18 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस ने 15 सीटें जीती हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है। यूएमएल ने 7 सीटें जीती हैं और वो 3 सीटों पर आगे है, जबकि एनसीपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है और 2 सीटों पर इसकी बढ़त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के सफल संचालन के लिए नेपाल की जनता और सरकार को बधाई दी है। इसराइल ने आज सवेरे दक्षिणी लेबनान पर हमला तेज कर दिया, जिसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स की लेबनान की शाखा के कमांडरों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले इसराइल ने शनिवार को तेहरान में एक तेल भंडार प्रतिष्ठान पर हमला किया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 8 लोग मारे गए। साने मीडिया ने बताया कि इसराइल के ड्रोन ने बेरूत के एक होटल पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कल पड़ोसी देशों पर हमलों के लिए माफी मांगी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़ा प्रहार करने की धमकी दी और कहा कि और भी क्षेत्र और जनसमूह निशाने पर होंगे। उन्होंने स्तर पर किसी भी तरह के समझौते की संभावना से साफ इनकार कर दिया। इस लड़ाई में अब तक ईरान में 1230 लोग, लेबनान में 290 से अधिक और इसराइल में 11 लोग मारे जा चुके हैं। 6 अमरीकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 7 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र से 52,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया और खाड़ी के घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। पश्चिम एशिया संकट के कारण विदेशी निवेशकों ने पिछले 4 कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयर बाजारों में 21,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इससे पहले फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस बीच एफपीआई ने भारतीय ऋण बाजारों में 855 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के मद्देनजर कतर के दोहा में 25 से 27 मार्च तक होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की 3 दिवसीय बैठक स्थगित कर दी गई है। ये बैठक अब अप्रैल में होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों से सफलता के 3 प्रमुख सिद्धांतों, कड़ी मेहनत, आत्म अनुशासन और समर्पण का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का सकारात्मक उपयोग करने की अपील भी की। महाराजा वीर विक्रम शतवर्षिकी भवन में आज त्रिपुरा विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शोध गतिविधियां जारी रहनी चाहिए और राष्ट्रीय विकास के लिए शोध को नवाचार में परिवर्तित करना चाहिए। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आज शाम 5 बजे बर्मिंघम में फाइनल में लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के लिन चुन यी से होगा। 24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने कल शाम रोमांचक सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को हराया। अहमदाबाद में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम 7 बजे मौजूदा चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम चौथी बार जबकि न्यूजीलैंड दूसरी बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 6:30 बजे से प्रसारित होगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 13 मार्च तक छिटपुट वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में बिजली गिर सकती है। अगले 3 से 4 दिन में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। आज हिमाचल प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाएं अवसर और सहयोग मिलने पर हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल चुनाव में बढ़त हासिल की। स्थापित पार्टियों को पछाड़ते हुए सरकार गठन की दिशा में कदम बढ़ाया। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का सामना लिन चुन यी से होगा और अहमदाबाद में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में आज शाम भारत का सामना न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।